ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவ மகிமா பிரசன்டட் பாய் சுவாமி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय. सदघन चिदघन आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की अनंत असीम अहेतु की कृपा के साथ परात्पर परब्रह्म परमात्मा शुद्ध निष्कल ब्रह्म सनातन ऐसे परम शिव की महिमा बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान शिव, शिव नाम परम पवित्र है. इस परम पवित्र पावन नाम के स्मरण से हमारा जीवन पवित्र बनता है. भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्र कहते हैं दो इंद्रियां हैं जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है, एक नेत्र और दूसरे स्रोत, आंखों से और कानों से. नेत्र भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन करते हुए आपने देखा होगा नेत्र बंद करते हैं. जो भगवान की पवित्र पुण्यमय मूर्ति हम विग्रह के रूप में सामने देखते हैं, ये भगवान का विग्रह शरीर है. इस शरीर को नेत्र के द्वारा ज्यों का त्यों हम हृदय में लाने की कोशिश करते हैं और उसे तब तक देखते हैं जब तक सामने यूं की त्यों छवि हमारे हृदय में न समा जाए और हृदय में नेत्रों के द्वारा भगवान को बसा करके और फिर हम वापस लौटते हैं अपने गृह काज के. और ये क्रिया कब होती है? बोले रोज रोज होती है. रोज रोज मंदिर जाते हैं, रोज रोज संतों के दर्शन करते हैं. इसका लाभ क्या है? गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहम तव दर्शनात्. प्रभु आपके दर्शन से पाप नष्ट होते. गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यम, ये आगता सुख संपत्ति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो, हमारे पाप दुख दरिद्र नष्ट हो, पुण्यो हम तव दर्शनात्. इससे, इस दर्शन से जो पुण्यार्चित हमने किया, पुण्य की प्राप्ति की, उस पुण्य के फल स्वरूप हमें ये फल प्राप्त हुआ. इस फल को प्राप्त करने के लिए हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं और नेत्र के द्वारा उन्हें अपने हृदय में बसाते हैं. ये पुण्य मिलता है तीर्थ में जाने का, दर्शन करने का. पर याद रखना ये पुण्य अल्प है. ये जो पुण्य है, जो पुण्य हमें प्राप्त हुआ कि दर्शनों से प्राप्त हुआ, और पुण्य क्षीण भी होता है, खत्म भी होता है. दूसरा भगवान का वाणमय शरीर है. वो शरीर भगवान का, भगवान हमारे हृदय में आते हैं बोले किसके द्वारा? कानों के द्वारा. वाणमय शरीर भगवान का शब्द है, शब्द के माध्यम से. एक एक शब्द करके जब अक्षर से हम सुनते हैं तो शब्द के साथ भगवान का शरीर हमारे हृदय में प्रवेश करता है धीरे 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 धीरे. इसीलिए बार बार हमें कथा श्रवण की, पुण्य श्रवण की, कीर्ति श्रवण की, यश श्रवण की, महिमा श्रवण की, मंत्र श्रवण की हमारे को आवश्यकता पड़ती है। ये भगवान का शब्द वाणमय शरीर है, इस मांगमय शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है और इसका जो लाभ है वो लीजिए परम लाभ को देने वाला है, अल्प लाभ नहीं, परम लाभ। क्योंकि मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत है, अर्थात मंत्र से, शब्द से, जो मन हमारा अन्यत्र चला गया है, जो मन हमसे दूर निकल गया है, कहाँ गया? बोले यतो यतो मन तत्र तत्र प्रपंच, जहां जहां मन गया वहीं वहीं तो संसार है। और कभी संसार का सार क्या है, आपने ये बात सोची? जहां भी ये मन गया उस असारता में सार क्या है? अब रोज श्लोक बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। इस संसार का जो सार है वो क्या है? संसार सारम, संसार सार तो वही है जिनके गले में सर्पों की माला है, भुजगेन्द्रहारम, अर्थात जो नागों की माला पहने हुए हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, पंचाक्षर है ना, ये भगवान संशिव ही इस संसार का सार है। सार तत्व शिव है, असार संसार का सार केवल एकमात्र सनातन शिव है। तो अपना मन जो संसार में चला गया है उससे निकालकर सार लेने के लिए किसकी आवश्यकता है? बोले शब्द की। तो शब्दों में जो ये शिवाक्षर है, जिसके लिए कल मैंने आपको कहा था शिव पंचाक्षर मंत्र है, इस मंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता ये है कि ये मंत्र और मंत्र जितने भी आए हैं वेद में, वो सारे मंत्र ब्राह्मण ग्रंथ में है, उपनिषद में, उपनिषदों के मंत्र हैं। ब्राह्मण क्योंकि वेद का भाग है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ग्रंथों में है। परंतु ये ओम नमः शिवाय संहिता भाग है, रुद्र संहिता, रुद्री पाठ जो आप लोग करते हैं, रुद्र संहिता यजुर्वेद में जो संहिता का भाग है, उस भाग में ये मंत्र है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमः शिवाय शिवतराय च। भगवान नमः शिवाय ये जो पंचाक्षर है ये संहिता भाग में है, इसलिए भगवान शिव के विशेष प्रिय नाम है नमः शिवाय। बोले नमः शिवाय, भगवान इस मंत्र में बड़ी ताकत है, अर्थात मंत्र में ताकत है कहने का भी सीधा सीधा सा अर्थ है, शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, कभी गंभीरता से सोचो, हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और हम एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। ये पास लाने वाला और दूर करने वाला क्या है? शब्द की ताकत। एक शब्द ने दूर बैठे हुए को पास लाकर बिल्कुल आपको सटा के बिठा दिया, और एक शब्द ने बिल्कुल तुम्हारे साथ बैठे हुए को हटाकर दूर कर दिया। ये ताकत किसकी है? शब्द की ताकत। शब्द की शक्ति सर्वत्र अंतर बाहर सब जगह व्याप्त दिखाई पड़ती है। शब्द शक्ति नित्य है, शाश्वत, इसीलिए इसको नाद ब्रह्म कहा है, शब्द ब्रह्म। ऐसे शब्द ब्रह्म के लिए साथ, शब्द के साथ जब हम अर्थ सहित, क्योंकि शब्द के में शब्द से अर्थ कभी अलग नहीं होता, अर्थ को ध्यान में रखते हुए, अर्थ को हृदय में लाकर शब्द जब अंतःकरण में उतरता है तो धीरे धीरे जो मन हमारा बहिर्मुख हो गया है उस बहिर्मुख मन को अपने भीतर, अपने अंतर्मुख करने के लिए मंत्र बहुत बड़ी ताकत है। और इन मंत्रों में ये पंचाक्षर मंत्र जिसमें पहला अक्षर है नौ, एकाक्षरी ब्रह्म, द्वयाक्षरी ब्रह्म, नौ जिसे नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय कहा गया है। ये नाग जो नागेंद्र है, नाग तीन शब्द है, ना ओ ग, और वैसे उससे पूर्व शब्द आता है ओम, ओम में तीन मात्राएं ओ उ म, और उसके साथ अर्धबिंदु, बिंदु संयुक्त, बिंदु से युक्त होकर ये जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं के साथ यदि हम ओमाक्षर का ध्यान करते हैं और ओम के साथ भगवान के इस सुंदर मंत्र का, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, तो नौ जो शब्द है, एकाक्षरी ब्रह्म तो केवल प्रणव है, केवल ओम अपने आप में ब्रह्म है। उसके साथ किसी एक केवल केवल एकाक्षर का हम जप करें तो प्रणव का जप करें, और प्रणव जप के साथ नमः शिवाय, और नमः शिवाय से नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय च दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागों की माल नागेंद्र हाराय, नाग दो सर्फ जिसे हम कहते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो जमीन पर चलते हैं उन्हें सर्फ कहते हैं, और जो भूमि के अंदर रहते हैं उन्हें नाग कहते हैं। नाग देव योनि में है, अर्थात नागों की विशेषता है। विशेषता क्या है, बोले नाग के लिए ऐसा ग्रंथकार कहते हैं कि नाग जिन्हें भगवान शिव ने अपने गले में नागेंद्र हाराय आभूषण बना करके धारण किया हुआ, जिनके गले में सर्प है, नाग हैं, जिनके शरीर पर नाग लिपटे हुए हैं, नागों के आभूषणों से जो सुशोभित हैं, वो शिव कैसे हैं? बोले ये नाग क्या है, हमारे यहाँ नाग का दर्शन शुभ दर्शन माना गया है, अच्छा दर्शन माना। यदि नाग सर्प स्वप्न में भी दिखाई दे तो वो लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला होता है। सर्प का काटना अच्छा नहीं, सर्प का देखना अच्छा है। सर्प का दर्शन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कहा। वल्लभाचार्य जी के एक प्रसंग में मैं पढ़ रही थी भागवत के, बहुत अच्छी बात, ये मत मेरा नहीं है, ये भागवत के दसम स्कंद के 28वें अध्याय में भी भगवान ने ऐसी चर्चा की कि जिसे मैं बहुत ज्यादा स्नेह करता हूँ, बोले उसे क्या देता हूँ, धीरे 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 उसका धन हरण कर लेता हूँ। जब उसका धन हरण कर लेता हूँ तो जब तक कोई धनवान होता है उस धनवान के पीछे सब ये मेरा जो जो कोई श्रीमानी अच्छा धन संपत्तिमान व्यक्ति होगा ना, दूर का जिसका कुछ लेना देना भी नहीं होगा, वो कहीं कहीं से रिश्ता निकाल के कह देगा वो अमुक आदमी मेरा ये लगता है, उसके सब स्व स्व अपने 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 बन जाते हैं। और जो बेचारा बिल्कुल निर्धन हो जाएगा, दरिद्री हो जाएगा, कुछ पास में नहीं होगा, तो धीरे धीरे करते करते सब स्वजन संबंधी उसका सारा रिश्ता उससे समाप्त करके छोड़ करके उसको अलग करते जाएंगे। ये संसार का नियम और ये व्यवहार में देखने को भी मिलता है। उसके साथ कोई नहीं चलते, उसे कोई नहीं अपनाता, सब उसे उससे दूर किनारा करते हैं, कहीं ये हमसे कुछ मांग न ले, कुछ ले न ले। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जब वो सबसे उसका मोह भंग होता है तो उसका मन मेरे में लगता है, और जब उसका मन मेरे में लगता है तो मैं उसे मुक्ति प्रदान कर देता हूं, संसार के बंधन से जन्म के मुक्ति प्रदान कर देता हूं। अर्थात इससे स्पष्ट ये हुआ कि भगवान कहते हैं, मतलब ऐसा मत है संत का कि देखो भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। बोले कौन प्रिय है? लक्ष्मी बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान को विष्णु को कहते हैं लक्ष्मीपति। तो अपनी प्रिय नारायण को जो प्रिय लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी दूसरों को देने के लिए वो तैयार नहीं होती। धन हरण कर लेता हूं का मतलब लक्ष्मी को मैं ले लेता हूं, माने भगवान नारायण दूसरे को लक्ष्मी देने पर प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए कहा क्या कि भगवान शिव की उपासना करने से, शंकर जी की उपासना करने से भगवान शिव क्या है, ये चंद्रचूड़ चंद्रनाथ औघड़ दानी भगवान शिव ऐसे हैं, शमशान वासी इन्हें कुछ नहीं चाहिए। भस्मंग रागाय, ये तो संसार में रहने वाले भस्म को शरीर में धारण करने वाले ये भगवान शिव, जो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है भगवान शिव, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। रिद्धि ले जाओ, सिद्धि ले जाओ, लक्ष्मी ले जाओ, कुछ ले जाओ, भगवान कुछ अपने पास नहीं रखते। अर्थात सुख समृद्धि के प्रदान करने वाले भगवान शिव की उपासना करने से एक लौकिक वो है कि भगवान शिव की कृपा से समृद्धि की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कुछ चाहिए नहीं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि भगवान शिव का विवाह माँ पार्वती के संग हुआ। गिरिराज कुमारी है, भगवान शिव की सेवा में संलग्न है, बहुत तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, वर के रूप में प्राप्त किया, और प्राप्त करके कैलाश में जाकर माँ उमा भगवान शिव के संग निवास कर रहे हैं। भगवान शिव अपनी तपस्या में तल्लीन है और माँ उनकी सेवा करती हैं और शिव की आराधना करती हैं। उनकी सेवा से भगवान शिव को एक दिन प्रसन्न किया और प्रसन्न करके पार्वती की इच्छा को भगवान शिव ने जानना चाहा। भगवान शिव कहने से ने पूछा पार्वती से, तो भगवती पार्वती कहती है, उमा कहती है, प्रभु हम सदग्रस्त हैं और गृहस्थ जीवन जीने के लिए तो हमें एक मकान की आवश्यकता है। पर्वत के ऊपर रहकर, वनों में रहकर तो ये जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, इसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप एक भवन निर्माण करें। आपके पास कोई भवन नहीं। माँ पार्वती के कहने पर और शिवा को प्रसन्न करने के लिए एक सुंदर सुंदर भवन निर्माण करवाया गया, देवताओं को कह करके। और मैं ये सुंदर सा भवन धनवंती से महाराज से कहकर ये वन विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर मकान बना कर दिया, भवन बनाया सुंदर, पुरी की रचना की। अब ऐसी परंपरा है कि घर बना करके घर में सबसे पहले नहीं जाना चाहिए, वहां पूजा करा लेनी चाहिए। अब पूजा कराने के लिए ग्रह पूजा हो, बोले ये बात पता किसे चली, विश्वरूपा पुत्र रावण को, कि भगवान शिव की गृह प्रवेश की पूजा होनी है। पूजा के लिए रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान भी है, ब्राह्मण है, और उसने भगवान शिव के पूजा कार्य को संपन्न कराने के लिए कैलाश में गया और बड़े प्रेम से ब्राह्मण ने पूजा संपन्न कराई। जब दक्षिणा देने की बारी आई तो उसकी दृष्टि उस भवन पर, उस सुंदर शिव रचित इस नगरी पर पड़ी और ब्राह्मण ने दक्षिणा देने की बात आई तो भगवान शिव से कहा, प्रभु दक्षिणा में यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो ये सुंदर भवन, ये सुंदर नगरी आप कृपा करके मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर एक क्षण भी नहीं लगाया और वो सारी की सारी, सारे का सारा भवन, ये सुंदर रची हुई जो स्वर्णमय थी, इस नगरी को भगवान शिव ने रावण को दे दिया। वही लंकापुरी थी जो सोने की बनी हुई है। तो भगवान शिव तो जी कहते हो, कहने का अर्थ ये है कि उन्हें तनिक भी देर नहीं लगी, एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं हुआ। भगवान शिव ऐसे दाता हैं, ऐसे दानी हैं, जिन्हें देने में देर नहीं लगती है। और आशुतोष हैं, थोड़े में खुश होने वाले। आशुतोष शब्द का अर्थ होता है थोड़े में खुश होने वाले। थोड़े में कितने में खुश होते हैं, बोले किसी को रिझाने के लिए तो कुछ चाहिए, किसी को रिझाने के लिए कुछ चाहिए, भगवान शिव को रिझाने के लिए तो केवल एक लोटा पानी चाहिए, जो केवल जल से तृप्त हो जाए, जल से प्रसन्न हो जाए। ऐसे भगवान सदाशिव जो सर्वदानी है, सर्वदाता है, रिद्धि सिद्धि के प्रदान करने वाले हैं, सुख समृद्धि और लक्ष्मी वैभव, यश वैभव, कीर्ति के दाता हैं, ऐसे भगवान शिव हैं। इनके नाम का स्मरण करने से सर्वा संपत्ति प्राप्त होती है, इस प्रकार का मत किसका है? बोले वल्लभाचार्य जी महाराज का। भगवान को देने में तो कुछ विलंब हो सकता है, क्योंकि वो लक्ष्मी जल्दी देते नहीं है, पर शंकर जी को कुछ चाहिए नहीं तो वो देने में कुछ देर लगाते नहीं है। भगवान विष्णु तो लक्ष्मी देने में सोचते हैं, क्योंकि वो प्रिया हैं, पर शिव की प्रिया नहीं है। शिव तो विरक्त हैं और अवधूत के रूप में रहने वाले। ऐसे भगवान शिव के लिए कहा, नागिंद्र हाराय त्रिलोचनाय, जिन्होंने सर्प को, अर्थात भगवान शिव के इस मंत्र में पहला शब्द नौ से है, जिससे कि सर्प आदि जिनको आभूषण के रूप में भगवान शिव ने अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं। और वो शिव आखिर है कैसे? बोले त्रिलोचनाय, तीन नेत्र है, तीन नेत्रों वाले शिव, त्रिनेत्रधारी, सूर्य चंद्र बंदी नयन। भगवान शिव के यूं कहा गया है कि तीन वेदत्रय, तीन वेद ही विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदिर दिव्य चक्षु से, तीन वेद ही उनके ये तीन चक्षु हैं, ऋग यजु साम, ये तीन वेद भगवान शिव के तीन नेत्र हैं। और ये कहा गया कि भगवान शिव के तीसरे नेत्र में क्या है? बोले तीसरे नेत्र में तो भगवान शिव की अग्नि है। ये नेत्र हमेशा शिव बंद रखते हैं। कहीं भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो क्या होगा? बोले एक बार खुला था। कब खुला था? जब कामदेव को भस्म किया था। इसमें इतनी भयंकर अग्नि है, इतनी भयंकर अग्नि है कि भगवान इस नेत्र की अग्नि में बाणासुर का पुत्र मन में सोचने लगा कि भगवान शिव को प्रसन्न करके मैं उनसे ये तीसरे नेत्र की अग्नि प्राप्त कर लूं, और इस अग्नि को लेकर के मैं भस्मों का समस्त देवताओं को पराभूत करके मैं सर्व देव सुख को प्राप्त कर लूं। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत तप किया, और तप पूर्वक जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान शिव से कहा, प्रभु कृपा करके मुझे आप ये जो तीसरे नेत्र में आपकी अग्नि है वो आग मेरे हाथ में हथेली में स्थापित कर दीजिए, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। इसे कृपा करके आप मुझे अपने हथेली में दे दीजिए। भगवान शिव ऐसे दानी है कि देने में देर नहीं करते, उन्होंने तुरंत दे दिया। भगवान शिव जब वरदान देने के लिए आए थे, प्रकट हुए थे, तो भगवती उमा भी उनके संग में थी। भगवती उमा का स्वरूप रूप देख करके ये असुर इतना मुग्ध हुआ, इतना मोहित हुआ, सोचने लगा कि शिव को समाप्त करके मैं शिव प्रिया को ग्रहण कर लूं। और ये मन में कुभाव लेकर के भगवान शिव को भस्म करने के लिए जब भगवान शिव की ओर बढ़ा, तो भगवान शिव भस्मासुर को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान शिव भाग रहे हैं, और भगवान शिव को भागते हुए देख मां मन ही मन श्री हरि विष्णु का स्मरण करती है। और मन ही मन उसके, क्योंकि भगवान शिव ऐसे दाता हैं कि वरदान देते समय तनिक भी विचार नहीं करते, जब देने में आते हैं तो कुछ सोचते नहीं, सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए कहा ये तो अवघड़ दानी है, खुद अवघड़ है और दान कैसे करते हैं, इन समान शिव समान दानी को ना ही, उनके समान दानी और कोई न हुआ है न हो सकता है। भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दिया, परंतु मां ने मन ही मन स्मरण किया और भगवान श्री हरि नारायण सामने से प्रकट कर आए और अब कहने लगे, बाण पुत्र तुम तो बहुत इतने श्रमित हो रहे हो, इतने तेज से भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं प्रलय की अग्नि मेरे हाथ में, शिव से मैंने वरदान प्राप्त कर लिया है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस अग्नि को लेकर के शिव को भस्म कर दो। किसकी बात कर रहे हो? वो जो जटाजूट धारण किए हुए हैं, भस्मांग में लपेटे हुए हैं, भांग धधूरा और आदि को का सेवन करने वाले, जो नशे में उन्मत्त रहते हैं, जिन्हें अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं है, ऐसे शिव की बात पर तुमने विश्वास कर लिया?